हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मंथन के घर पर अच्छी खासी बहस छिड़ी हुई थी। मंथन के पेरेंट्स यही चाहते थे कि वो आयु को छोड़ दे। मंथन आयु को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन बीच में मंथन की माँ कविता जी ने सुसाइड करने की धमकी दी तो मंथन मजबूर हो गया था। मंथन और साक्षी यही चाहते थे कि आयु फिलहाल के लिए वहाँ से चली जाए। आयु को वहाँ से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस वो यही चाहती थी कि मंथन आज उनके रिश्ते के लिए स्टैंड ले। आयु के दिल को यही डर सता रहा था कि अगर आज मंथन ने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया तो उसकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इस बात की इजाज़त कभी नहीं देगी कि इतना अपमान सहने के बाद वो फिर से मंथन के पास आए। आज का दिन आयु के लिए बहुत भारी था। पहले गौरवी जी ने उसके सामने मंथन या आरव में से किसी एक के साथ रिश्ता रखने की बात कही थी और फिर बाद में यहाँ इतना सब कुछ हो गया था। आयु मंथन की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। मंथन ने आयु की आंखों में देखा और मायूस स्वर में कहा, आयु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती, लेकिन यहाँ बात मेरी मम्मी की ज़िंदगी की है। मैं हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ने को नहीं कह रहा हूँ, बस मुझे थोड़ा टाइम दो। आयु, तुम तो बहुत मैच्योर हो, फिर आज तुम मुझे समझ क्यों नहीं रही हो? समझ तो तुम नहीं रहे हो मंथन, आज तुम अपने पेरेंट्स के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हो। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि तुम फ्यूचर में इनकी बातों में आकर मुझे नहीं छोड़ोगे? आयु ने जवाब में कहा, मैं तुम्हें प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम खुद देख रही हो कि मम्मी खुद की जान लेने पर अड़ी हुई हैं, ऐसे मोमेंट पर भी तुम्हें कमिटमेंट चाहिए, मंथन हल्के गुस्से में बोला, क्योंकि आयु उसकी सुनने को तैयार नहीं थी। आयु की आंखों में नमी उतर आई थी। उसे लगा था कि मंथन उसका साथ देगा। आयु ने गहरी सांस ली और मंथन का हाथ पकड़कर गहरी आवाज में कहा, ट्रस्ट मी मंथन, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं यहां से चली जाऊंगी, लेकिन एक बार अपने घर वालों के सामने मुझे एक्सेप्ट कर लो प्लीज मंथन। इन्हें कह दो ना कि ये हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें। मैंने तुम्हें एक्सेप्ट किया हुआ है आयु, फिर भी तुम इस तरह जिद पर अड़ी हुई हो, और तुम्हें मेरा जवाब सुनना ही है तो सुनो। अगर इस सिचुएशन में मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो वो मेरी मम्मी की लाइफ होगी, मंथन ने खुद को सख्त करके जवाब दिया और आयु के हाथ को स्वयं के हाथों से अलग कर दिया था। आयु हैरानी भरी निगाह से मंथन की तरफ देख रही थी। उसे अभी भी मंथन के फैसले पर यकीन नहीं हो रहा था। साक्षी ने भी इसका अंदाज़ा नहीं लगाया था कि मंथन अपने पेरेंट्स की बातों में आ जाएगा। वहीं आरव, जो दिल ही दिल में यही चाहता था कि मंथन आयु के बजाय अपने पेरेंट्स को सेलेक्ट करे, उसे न जाने क्यों खुशी नहीं हो रही थी। आयु की आंखों में आंसू थे जो आरव से बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। पहली बार उसने अपने इमोशन से ऊपर किसी की खुशी सोची थी। वहीं मंथन का जवाब सुनकर कविता के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। उसने तुरंत चाकू नीचे गिरा दिया था। आयु ने अपने आंसुओं को साफ किया और कड़वाहट से कहा, तुमने अपने पेरेंट्स को चुना, मुझे इस बात का दुख नहीं है, पर तुम अच्छे से जानते हो कि वो सिर्फ ऐसा करने की धमकी दे रही थी, ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। तुमने खुद बताया था, साक्षी दीदी के टाइम में भी इन्होंने ऐसा ही किया था, फिर भी साक्षी दीदी ने अपने दिल की सुनी। देख लो, ये आज भी जिंदा है। ये फैसला लेकर आज तुम एक अच्छे बेटे तो बन गए मंथन, इसीलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। लोग चाहे कुछ भी कहें, पर तुम तो सच जानते हो ना कि मेरे और आरव की शादी के पीछे की सच्चाई क्या है। मंथन, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मेरा साथ दोगे, तुमने मुझे छोड़ दिया, एक झटके में हमारा रिश्ता खत्म कर दिया। जब मेरी और आरव की शादी के बाद तुम इनसिक्योर फील कर रहे थे, तब मैं हमारे रिश्ते के लिए अपनी फैमिली तक से लड़ी थी, ताकि तुम कभी ये ना सोचो कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया था, लेकिन जब तुम्हारी बारी आई तब तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। क्यों हमारे रिश्ते को इस तरह खत्म किया तुमने मंथन? आयु के मन में जो भी चल रहा था उसने गुस्से में वो सब कह दिया था। आयु की आंखों में आंसू थे, वो खुद को संभालने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर आज उसका भरोसा और रिश्ता दोनों टूटे थे। आयु आज खुद के आंसुओं को छुपाकर मजबूत बनने की कोशिश तक नहीं करना चाहती थी। आरव और मंथन दोनों ने ही आयु को पहली बार टूटते हुए देखा था। जहां मंथन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, वहीं आरव को आयु के लिए बहुत बुरा लग रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, आयु वहां से चली गई। आयु को संभालने के लिए आरव उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन मंथन ने जो किया था उसके बाद वो चुप भी नहीं रहने वाला था। आरव ने मंथन की तरफ देखा और सिर हिलाकर कहा, अगर ये सब मैं करता तो फिर भी सूट कर जाता, पर तुमने क्या किया मंथन, तुमने आयु का दिल तोड़ दिया। मैंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम्हें नहीं पता, लेकिन सुबह दादी ने आयु के सामने यही शर्त रखी थी कि उसे मेरे और तुम में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा, और उसने तुम्हें चुना। अपनी फैमिली के दबाव में आकर तुम एक अच्छे बेटे तो बन गए, लेकिन मत भूलो कि साक्षी की शादी ना करवाने के लिए भी इन्होंने यही ड्रामा किया था। साक्षी इनकी बातों में आ जाती तो ये आज वो खुश नहीं रह पाती। अभी भी वक्त है, जाकर उसे संभाल लो तो ये रिश्ता बच सकता है। इससे पहले कि आरव कुछ और कहता, कविता बीच में बोल पड़ी, तुम मेरे बच्चों को बहकाना बंद करो, पहले साक्षी और अब मंथन। तब अगर साक्षी हमारी बात मानती तो कम से कम आज इसकी शादी तो टूटने से बच जाती। आपसे तो मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मंथन इतनी आसानी से आपकी बातों में आ जाएगा। खैर, जो भी है, मुबारक हो, आप इस बार कामयाब हो गई।
आरव ने तंज कसते हुए जवाब दिया और वहां से चला गया। वहीं आरव के जाते ही साक्षी ने मंथन को समझाते हुए कहा, आरव बिल्कुल ठीक बोल रहा था मंथन, तुमने आयु के साथ ठीक नहीं किया, वो गलत नहीं थी। तुम अभी उसके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो तो फ्यूचर में कैसे इन्हें कन्विंस करोगे? कल को फिर ये अपनी जान लेने का बहाना बनाएंगे और फिर क्या तुम आयु को इस तरह बार बार बीच मझधार में छोड़ दोगे? मंथन से बात करने के बाद साक्षी कविता की तरफ पलटी और बोली, और आप बंद कीजिए आपका ये मेलोड्रामा। कब तक आप अपने बच्चों को ऐसे ही इमोशनली ब्लैकमेल करके उनको उनकी खुशियों से दूर रखती रहेंगी? आपको दिख नहीं रहा आयु और मंथन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं? आज आपकी वजह से आयु का दिल टूटा है, इनके रिश्ते में दरार डाली है आपने। मुझे नहीं लगता कि आयु इसके बाद कभी मंथन को माफ कर पाएगी। हाँ तो अच्छा हुआ ना जो उससे पीछा छूट गया। अब मैं मेरे मंथन की शादी किसी अच्छी लड़की से करूंगी। वो लड़की बस मेरे मंथन के पैसों के पीछे थी। अच्छी खासी नौकरी करने वाला और इतनी सारी पर इतनी ज्यादा जायदाद वाले लड़के को आखिर कौन छोड़ना चाहेगी? वैसे भी मुझे अपने मंथन की शादी हमारे बराबरी की लड़की से करनी है। कविता ने उल्टा साक्षी को ही डांट दिया था। अपनी माँ की बात सुनकर इस बार साक्षी के भी सब्र का बांध टूट गया। वो सीधे सीधे आयु को गोल्डिगर बोल रही थी। साक्षी ने अपने गुस्से में जवाब दिया, तो आपको लगता है कि वो आपके बेटे की अच्छी सैलरी और थोड़ी बहुत जमीन जायदाद की वजह से उसके साथ रहना चाहती हैं? चलिए सबसे पहले मैं आपकी इस गलतफहमी को दूर करती हूँ। शायद आप आयु को अच्छे से जानती नहीं हैं। आयु का पूरा नाम आयुष्का सिंघोबिरॉय है। इंडिया की टॉप रेटेड फैशन इंडस्ट्री के मालिक जय सिंघोबिरॉय की बेटी है वो। आप पैसों की बात कर ही रही हैं तो एक बात बता दूं, उसके आगे मंथन की कोई औकात नहीं है।
आयु की असली पहचान सुनकर मंथन के परिवार को झटका सा लगा और वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक पल के लिए उन्हें अपने बर्ताव के लिए अफसोस हो रहा था। इसी बीच मंथन की बुआ रितु ने कहा, हाँ तो क्या हुआ जो वो इतनी अमीर है? तलाकशुदा तो है ना? तुम्हें क्या लगता है, हम क्या उसके पैसों के लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर देंगे? भाभी आप इसकी बातों में मत आइए, मैंने मंथन के लिए पहले से ही लड़की ढूंढ रखी है और हम उसकी शादी उसी से करेंगे, काफी काबिल और समझदार है। हाँ दीदी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ऊपर से वो लड़की भी काफी तेज तर्रार है, देखा नहीं कि कैसे मेरे बेटे को बहकाने की कोशिश कर रही थी? कविता ने उसकी बात पर हामी भरी। वे लोग आपस में ही बातें करने लगे। इस बीच साक्षी ने मंथन की तरफ देखा जो खुद भी काफी खोया हुआ लग रहा था। मंथन जानता था कि आज उसने आयु का दिल दुखाया था, पर वो मजबूर हो गया था। वहां खड़े हुए मंथन का दम घुटने लगा और वो एक पल भी उनकी बहस को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मंथन जल्दी से अपने कमरे में चला गया तो वहीं साक्षी उसे इस तरह टूटा हुआ देखकर परेशान हो गई। कई बार पेरेंट्स अपनी जिद और सो कॉल्ड इज्जत के दिखावे के चक्कर में सच में सेल्फिश हो जाते हैं। बेचारा मंथन, इसे अपने ही फैसले पर अफसोस हो रहा होगा, तो मुझे आयु की भी फिक्र सता रही है। आई होप कि आरव ने उसे संभाल लिया होगा। मुझे जल्द से जल्द इन्हें यहाँ से भेजना होगा, कुछ भी करके आयु और मंथन का रिश्ता फिर से सुधारना ही होगा, साक्षी ने मन ही मन कहा। वहीं नीचे आयु के जाने के बाद आरव ने उसके पीछे जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाया था, बस वो 10 मिनट बाद ही वहां पहुंचा था, लेकिन उसे आयु कहीं दिखाई नहीं दी। इतनी जल्दी कहाँ चली गई? मुझे उसके पीछे ही चले आना चाहिए था, वो परेशान है और ऐसे हालात में खुद को हर्ट ना कर ले, आरव ने परेशान लहजे में कहा। आयु के पास खुद की गाड़ी नहीं थी और आसानी से उसे उस एरिया में टैक्सी मिलना भी मुमकिन नहीं था। आरव को लगा कि आयु यहीं आसपास होगी। उसने आसपास के सभी एरिया को छान मारा था लेकिन आयु कहीं नहीं मिली थी। थककर आरव ने आयु को कॉल किया तो उसका नंबर भी बंद जा रहा था। आयु के कोई खास दोस्त भी नहीं थे, हाँ सुहानी के साथ उसकी अच्छी बनती थी। आरव ने सुहानी को कॉल करके पूछा तो उसने भी आयु के पास होने से इनकार कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि दादी के पास चली गई हो? इतनी जल्दी किसी होटल को बुक करना भी मुमकिन नहीं है, मुझे उन्हें ही कॉल करके पूछना होगा, आरव ने सिर पकड़कर कहा। उसका दिल आयु के लिए सच में बहुत घबरा रहा था। ऐसे में आरव ने गौरवी जी को कॉल किया लेकिन आयु उनके पास भी नहीं गई थी। गौरवी जी के बाद आरव ने युवानी को कॉल किया और कहा, चंडीगढ़ के सभी होटल मोटल और कुछ टाइम के लिए रहने के लिए जो भी ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं वहां सब जगह कॉल करके पूछो कि आयु वहां गई है या नहीं। क्या हुआ सर, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, युवानी ने हैरानी से पूछा, क्योंकि आज से पहले आरव ने उसे ऐसा काम कभी नहीं दिया था। आरव पहले ही आयु के लिए परेशान था, ऊपर से युवानी उसकी मदद करने की बजाय उल्टे सीधे सवाल पूछ रही थी। आरव उस पर चिल्लाकर बोला, जब तुम्हें पता है कि मैं परेशान लग रहा हूं तो फिर पूछने का क्या मतलब हुआ? जो काम दिया है वो करो और मुझे जल्द से जल्द आउटकम चाहिए। लेकिन सर चंडीगढ़ बहुत बड़ा है और यहाँ काफ़ी सारी जगह हैं, कुछ लोग तो अपना घर तक पीजी के लिए देते हैं, ऐसे में मैं सबको कॉल करके मैम का पता कैसे लगा सकती हूँ, युवानी ने घबराकर जवाब दिया। आरव के गुस्सा करने पर वो डर गई थी। नहीं कर सकती तो रिज़ाइन कर दो, आरव चिढ़कर बोला। युवानी की हैरानी से आंखें बड़ी हो गई थी, वो जल्दी से बोली, अरे नहीं सर मैं करती हूँ पता। युवानी के हाँ कहते ही आरव ने कॉल कट कर दिया था। हालांकि ये काम बहुत मुश्किल था लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी शिद्दत से आरव के काम में लग गई थी। तो वहीं आरव अपनी गाड़ी लेकर बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, यहाँ तक कि एयरपोर्ट तक जा आया था, लेकिन उसे आयु के बारे में कुछ पता नहीं चला था। अब आरव की सारी उम्मीदें युवानी से जुड़ी हुई थी।
रात के लगभग 11 बजे के करीब युवानी का कॉल जब आरव के पास आया तो उसकी सूनी निगाहों में उम्मीद की किरण लौट आई थी। जल्दी बताओ युवानी, वो कहाँ रुकी हुई है? आरव ने कॉल रिसीव करते ही कहा, आई एम रियली सॉरी सर, लेकिन वो किसी भी होटल मोटल या हॉस्टल तक में नहीं रुकी है। यहाँ तक कि मैंने उन सभी जगह पर भी कॉल किया था जिन्होंने अपना घर रेंट पर देने के लिए एडवर्टाइजमेंट डाला था, युवानी ने मायूसी से जवाब दिया। उसे भी बुरा लग रहा था कि वो आरव का काम नहीं कर पाई, ऊपर से उसने अपने साथ कुछ और भी लोगों को इस काम में लगा लिया था। युवानी को लगा कि आरव उसे डांटेगा और वो उसकी डांट सुनने के लिए पहले से ही तैयार थी, लेकिन आरव ने बिना कुछ कहे ही कॉल कट कर दिया था। आरव पिछले 10 घंटे से आयु को ढूंढ रहा था लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला था। इन 10 घंटे में उसने बहुत बार आयु को कॉल किया लेकिन अभी भी उसका नंबर बंद ही जा रहा था। आखिर कहाँ चली गई हो तुम मिसेस खुराना? अगर दिल टूटा था तो मैं संभालने के लिए तैयार खड़ा था, कोई शिकायत नहीं करता और ना ही इस बात की उम्मीद रखता कि तुम उसे छोड़ने के बाद मेरे पास आ जाओगी, लेकिन कुछ तो भरोसा दिखाया होता। आई होप कि तुम बिल्कुल ठीक हो, आरव ने कांपती आवाज में कहा। पहली बार उसके दिल में किसी को लेकर इतना डर लग रहा था। आरव के दिल में उल्टे सीधे ख्याल चल रहे थे। आयु जिस तरह से मंथन के घर से निकली थी उसे डर था कि कहीं आयु को कुछ हो तो नहीं गया था।